جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، فلا تتبعنا. तो उस क्लास में हम मिसारी शागिर्द का उन्वान पढ़ रहे हैं अपने हजरत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहू की किताब मिसारी मद से। ये आखिरी टॉपिक है इस किताब का, यानी आखिरी बयान है हजरत के सिलसिला बयानात का। तो उम्मीद है कि ये हम मुकम्मल कर लेंगे तो किताब को कवर तो कवर खत्म करने के कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमा दे। मिसाली शागिर्द में आखिरी बात जो चल रही थी पिछली क्लास में, जो कि पिछले हफ्ते हुई थी, वो अमाल का दारो मदार नीयतों पर है और इल्म अमल के बगैर वो बाले जान है। तो इसमें काफी सारे हासिल गुफ्तगू हुई थी कि इल्म के ऊपर अमल करने के बारे में दो बज़ाहिर यानी मुतजाद हदीसें पे पढ़ी थी। एक में था कि अमल के बगैर भी ज्यादा सवाब मिलता है, और एक में था कि अमल के बगैर वो इल्म बाइस वबाल हो जाएगा। ये तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक से करी थी। अब आगे फरमाते हैं कि जमाना तालिब इल्मी में गुनाहों से न बचने का वबाल। तो सलफ सालिहीन का एक अजीब सा कौल है, वो फरमाते हैं कि ज़माने तालिबे इल्मी में जो शख्स गुनाहों से नहीं बचता, अल्लाह ताला तीन चीज़ों में से एक में उसको ज़रूर मुब्तला मुब्तला कर देते हैं। पहली ये कि वो जवानी में मर जाता है और अपने इल्म से फ़ायदा नहीं उठा पाता। ठीक है, जवानी में मर जाता है, इल्म से फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो इसकी सूरतें क्या हो सकती हैं कि या तो ज़माने तालिबे इल्मी में ही मर जाए, क्योंकि इवन अगर 8 साल या 10 साल का वो इल्म हासिल कर रहा है, कोर्स कर रहा है, तो शुरू के 4 साल के अंदर भी इतना ज्यादा इल्म हासिल कर लिया जाता है, इतनी सारी किताबें और इतनी दकीक बातें जो है वो पढ़ ली जाती हैं, कि वो भी अच्छा खासा इल्म होता है। तो ज़माने तालिब इल्मी में ही अगर उसका इंतकाल हो गया तो अपने इल्म के ऊपर वो यानी उससे फायदा नहीं उठा सका। या ये कि जवानी में यानी 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र से पहले पहले भी जवानी ही कहलाती है। ठीक है, तो इससे एक और भी अहम नुक्ता सामने खुलता है कि सही मानों में इल्म से फायदा उठाने के लिए जो है ना, वो इंसान को वक्त की जरूरत होती है, वक्त। ठीक है, तो अगर किसी के पास वक्त ना हो तो वो ज्यादा इल्म भी हासिल नहीं कर सकता और ज्यादा इल्म के ऊपर अमल भी नहीं कर सकता। और मौत तो वक्त को बिल्कुल खत्म कर देती है। एक तो चीज है ना कि वक्त जो है वो है मौजूद लेकिन मसरूफियात के अंदर लग गया, तो आप जो है वो इल्म के ऊपर और अमल के ऊपर उसको लगा नहीं पा रहे। और एक है कि वक्त खत्म हो गया, मुद्दत आपकी पूरी हो गई। ठीक है, तो जल्दी मर जाए कोई बंदा तो उसे भी इल्म से फायदा नहीं उठा पाता कहलाया जाता है। अगरचे कि कुछ अकाबरीन हमारे ऐसे भी गुजरे हैं कि बहुत कम उम्र के अंदर उनका इंतकाल तो हो गया लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा इल्म से फायदा उठाया, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी इंतकाल जो है ना वो 50 या 52 साल की उम्र में हो गया था। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का तो उससे भी कम उम्र के अंदर, गालिबन 40 या 42 साल, 40 या 42 ईयर्स के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनका इतना इल्म के दुनिया आज तक जो है वो इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से जो है वो फायदा उठा रही है। उसी तरह से आज के दौर के अंदर एक बहुत बड़े यानी दुनिया के लेवल के मशहूर आलिम दीन, बल्कि बहुत सारे और भी हैं लेकिन इस वक्त मेरे जहन में एक ही नाम आ रहा है, अंग्रेजी लैंग्वेज में उन्होंने काम किया। ठीक है, और एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है askimam.org, askimam.org। मुफ्ती इब्राहिम देसाई साउथ अफ्रीका के रहने वाले, अगरचे के पीछे गुजराती इंडियन, ठीक है, उन्होंने दारुलूम देवबंद में जाकर के इल्म हासिल किया, या आई थिंक इन्हीं में से किसी मदरसे में जाकर इंडिया में इल्म हासिल किया, वहीं पे जो है वो मशाइख के साथ वक्त गुजारा, फैज हासिल किया। और फिर जाकर के साउथ अफ्रीका में काम शुरू किया, और इंतहाई यानी कम उम्र के अंदर उन्होंने दारुल उफ्ता की जो मेहनत शुरू करी है अंग्रेजी जुबान के अंदर, उससे पूरी दुनिया ने फायदा उठाया है और आज तक उठाई जा रही है। उनकी वेबसाइट आज भी मौजूद है, अगरचे कि उसके अंदर नई एडिशंस नहीं हो रही, लेकिन इतना मवाद उसके ऊपर मौजूद है कि आप किसी भी मसले के ऊपर फतवा पूछना चाहें, देखना चाहें तो आपको मिल सकता है। 54 ईयर्स की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, ये कोविड के जमाने में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जवानी में मर जाना से मुराद ये सिर्फ नहीं है कि जी अगर 40 साल में इंतकाल हो गया तो वो नाउज बिल्ला कोई गुनाहों में मुबतला थे, नहीं, डिपेंड्स कि उसके उन्होंने करा किया है और इल्म से उन्होंने कितना फायदा उठाया, कितना उनको फायदा नहीं मिला। बहरहाल हर चीज के अंदर एक तफसील होती है। दूसरी बात के बावजूद इल्मी कमाल के ऐसी जगहों पर मारा मारा फिरता है जहां उसका इल्म जाया हो जाता है और वो इल्म की अशाअत नहीं कर पाता, यानी दूसरों को अपना सीखा हुआ इल्म जो है वो सिखा नहीं पाता। मसलन आलिम है और फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, आलिम है और किसी दफ्तर में जॉब कर रहा है। ठीक है, हमारे हजरत जो है वो अपने काफी पुराने बयान के अंदर एक इसी तरीके के बहुत ही ज्यादा जहीन आलिम दीन का वाकया बयान करते थे कि उनके साथ भी इसी किस्म के मसले रहे, तो इतनी जहानत के बावजूद उनको जो है ना वो अपनी जिंदगी रिक्शा चला करके गुजारनी पड़ी, रिक्शा चला करके। ठीक है, तो इनसे जो है वो फायदा नहीं उठा सके, ना दूसरों को जो है वो अपनी जिंदगी में फायदा पहुंचा सके, और वो अच्छी खासी इबरतनाक कहानी थी जो कि हमारे हजरत सुनाया करते थे पहले अपने बयान के अंदर, मौजूद है सारे बयान में बातें। तो इस तरह का भी मामला हो जाता है कि अच्छा इस बात को जो है ना वो आजकल एक दूसरे रुख में भी काफी सारे बेचारे यानी बजायर उलमा ही हैं आजकल, जो नए एक पौध आई भी है उलमा की। ठीक है, तो नई पौध नई रोशनी, उसके अंदर जो है ना वो इस बात को जो है वो बड़ा नेगेटिवली लिया जा रहा है। ठीक, कि भाई बड़ा डिस्करेज किया जाता है, हमारे बड़े जो जो उलमा हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम आलिम बनने के बाद जो है ना वो किसी और फील्ड के अंदर चले जाओ, हालांकि हर फील्ड में जाना चाहिए। और जो है वो आलिम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े की तिजारत करते थे और फलाने जो है वो कोई और काम करते थे और फलाने जो है कोई और काम करते थे, तो आज क्यों मना करते, आज क्यों इसको डिस्करेज करते हैं कि आलिम दीन जो है ना वो किसी दूसरी फील्ड के अंदर नहीं जाए बल्कि मस्जिद के अंदर लगे, मदरसे के अंदर लगे। ठीक है, गोया कि ये एक बड़ी नेगेटिव बात के तौर पे पेश की जा रही होती है। और आजकल जो टीवी प्रोग्राम्स वगैरह बहुत ज्यादा इस किस्म की चीजें हो रही है, बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही होती, ज्यादा अच्छी बातें बल्कि हो रही होती है, लेकिन कुछ कुछ जो है ना वो दरमियान में इस किस्म की भी थिंकिंग जो है वो भी सामने आ रही होती है। तो भाई उसकी क्या वजह बनती है, इस किस्म की सोच जो है वो क्यों आज के नौजवान उलमा के अंदर ये चीज क्यों बन रही है? क्योंकि जो हमारे अकाबरीन के जो मकसद था ना इन दीनी मदारिस को बनाने का, वो मकसद या तो जहन से ओझल हो चुका है। ठीक है, कि दारुल उलूम देवबंद जो कि इन सब मदारिस का जो है वो बिल्कुल यानी मादर इल्मी है, तो वो किस मकसद के साथ बनाया गया था? एक तो वो मकसद या तो जहन से ओझल हो चुका है, या इन लोगों के, सबके नहीं ऑफकोर्स, ये इसका मतलब ये नहीं है सारे जो है वो एक ही तरीके से सोच रहे हैं, बल्कि इनकी नजर से या तो वो ओझल हो चुका है जो कि इस किस्म की बातें कर रहे हैं, या ये कि जो मौजूदा हालात दुनिया के अंदर चल रहे हैं ना उन हालात से बिल्कुल वाकफियत नहीं है, उन हालात के ऊपर नजर नहीं है कि भाई हम किन किस दौर से गुजर रहे हैं, किस जमाने से गुजर रहे हैं, दीन की हिफाजत के जमाने से हम गुजर रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। तो भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जमाना जो था ना वो दीन की हिफाजत वाला जमाना नहीं था, वो मुसलमानों का यानी ताबिंदा दौर था, मुसलमान दुनिया की जो है वो वाहिद अजीम तरीन पावर के तौर पर उस वक्त उभर चुके थे, और फितने जो थे ना वो दुनिया के अंदर वो तकरीबन यानी अपना सर जो है वो झुका चुके थे मुसलमानों के सामने, और इत मुसलमान पर मुस्लिम एम्पायर वॉज इन कंट्रोल। ठीक है, इस वक्त हम जमाने गुलामी में से गुजर रहे हैं और जमाने दज्जाल में से गुजर रहे हैं, इस वक्त दीनी उलूम की हिफाजत के लिए जो है ना वो तैयार नहीं है कोई, दीनी उलूम की हिफाजत करने वाले नहीं मिलते, बल्कि दीन को बदलने की मेहनतें जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा करके हर लेवल के ऊपर की जा रही है, दीन की तारीफात को बदलने की मेहनत, अकायद को बदलने की मेहनत, ठीक है। तो इस वक्त जो है ना वो पुराने वाली डेफिनेशंस नहीं चलती है जमाने, कि आप ही वो पढ़ के आप किसी और काम में लग जाए, पढ़ के आप किसी, भाई आप उलूम की हिफाजत, ये क्या है दीनी मदारिस, ये दीन इस्लाम के किले हैं, किले बल्कि आखिरी किले हैं ये दीन इस्लाम के, ठीक है। तो हमारे अकाबरीन अगर डिस्करेज करते हैं ना, जैसे कि हजरत यहाँ पे डिस्करेज ही तो कर रहे हैं, ये क्या है जुमला, ये नंबर टू पॉइंट क्या है कि वो लग जाता है फैक्ट्री के अंदर, वो लग जाता है दफ्तर के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो भाई डिस्करेज किया जा रहा है कि एनकरेज के एनकरेजमेंट के अंदाज में वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई उसकी वजह है ना जमाने के हालात से, इस दौर के, आप अपने आप को आशना क्यों नहीं करते कि हम किस जमाने से गुजर रहे हैं, क्या चल रहा है इस दुनिया के अंदर, क्या मेहनतें चल रही हैं इसमें। बहरहाल भाई अगर आपको मुआश का मसला है तो मुआश के मसले को फिर आप दूसरे तरीके से भी तो हल कर सकते हैं ना, ठीक है। बहुत सारी काम है जो कि अगर हम करना शुरू हो जाए तो मुआश का मसला जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे काम है करने के जिसको कि हम टैप ही नहीं कर रहे होते, ठीक है, कि मुआश का मसला उसे था। मुआश का मसला खाली जो है ना वो पैसे के रेल पेल से खत्म नहीं होता, कि रेल पेल होना शुरू हो जाए चलो जी मुआश का मसला खत्म हो गया, नहीं, बहुत सारे और एंगल्स होते हैं चीज को देखने के जिससे कि मसले जो है वो हल हो जाते हैं, लेकिन हम उन एंगल्स को नहीं देखना चाहते, बस ये चाहते हैं कि नहीं जी आलिम को जो है ना वो जॉब भी करनी चाहिए, आलिम को जो है वो डिग्री भी, वो पीएचडी भी कर लेना चाहिए, आलिम को जो है वो एमफिल भी कर लेना चाहिए, आलिम को जो है फलाना काम भी कर लेना चाहिए, इंजीनियर भी बन जाना चाहिए और एमबीए भी कर लेना चाहिए और डॉक्टर भी बन जाना चाहिए, और भाई एक ही बस। बहरहाल तो दूसरी बात यह है कि बावजूद इल्मी कमाल के ऐसी जगहों पे मारा मारा फिरता है जहां उसका इल्म जाया हो जाता है और वो इल्म की अशात नहीं कर पाता। अभी तो अशात तो दूर की बात, अभी तो हिफाजत की जरूरत है, अशात तो बाद में करना, पहले तो हिफाजत करो ना दीन की, ठीक है। वो मसलन आलिम है और फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, आलिम है और किसी दफ्तर में जॉब कर रहा है। तीसरी बात कि किसी हाकिम या बादशाह की खिदमत की जिल्लत उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब आप देख लें, जिन लोगों को कुछ अंदाजा है कि इस वक्त क्या चल रही है, क्या कहते हैं हमारे यहाँ कराची में, कहते हैं क्या चल रही है भाई, ठीक है, तो क्या चल रही है, जरा खोल आँख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, ठीक है ना, मशरक में डूबते हुए सूरज को जरा देख, अल्लाह इकबाल से माजरत के साथ, ठीक है, तो जरा आंखें खोलें और देखें कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो बादशाह की या हाकिम की खिदमत की जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। अल्लाह ताला हम सबको इस जिल्लत आमेज जिंदगी से महफूज फरमाए, ठीक है। उसको आ गई समझ, उसको आ गई समझ, जिसको नहीं आई तो वो इतना परेशान ना हो, यार के समझने की बात थी भी नहीं। आगे चले जी, इल्म कुर्बानी और मुजाहिदे से हासिल, तो कहते हैं कि जी इल्म हासिल करने के लिए इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है, मुजाहिदा करना पड़ता है, लिहाजा जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े इंसान को चाहिए कि कुर्बानी देकर इल्म हासिल करे, कुर्बानी देकर इल्म हासिल करे और इसमें कमी कोताही ना करे, ठीक है ना। यानी कुर्बानी जो है ना वो अपनी तरफ से यानी इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है कि मैं आज जो है ना मैं फलानी वाली कुर्बानी दूंगा जाकर के, ये मतलब नहीं होता कुर्बानी देने का, ठीक है। कुर्बानी देने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपके रास्ते में अगर कोई कुर्बानी की अपॉर्चुनिटी डालते हैं तो उससे जो है ना वो डरना नहीं, भागना नहीं, ठीक है ना। वी डोंट एस्क फॉर कुर्बानी, ये बकरीद वाली कुर्बानी की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये जो रास्ते के अंदर सऊबतें आती हैं, रास्ते के अंदर जो आजमाइशें आती हैं ना, तो उसमें जो अपने किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने किसी ख्वाहिश की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी रूटीन की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने एम्स एंड एम्बिशंस की कुर्बानी देनी पड़ती है, या कोई अल्लाह सबके हिफाजत फरमाए कोई फिजिकल कुर्बानी देनी पड़ती है, ये उस वाली कुर्बानी की बात हो गई, ठीक है। हमें नबी अलैहिस्सलाम ने आफियत मांगने के लिए कहा, आफियत, ये नहीं कि अल्लाह मुझे कुर्बानी के लिए जरा मौका दें फिर देखिएगा मैं कैसी कुर्बानी देता हूँ, नहीं भाई, हम नहीं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है, कि हम ये मांगे अल्लाह ताला से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफियत मांगने के कहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो उसमें जो है ना फिर अल्लाह तवक्कुल के साथ जो है वो कुर्बानी के लिए इंसान तैयार रहे। तो इंसान को चाहिए कि कुर्बानी देकर इल्म हासिल करे और इसमें कमी कोताही ना करे। हमारे सलफ सालेहीन ने इल्म हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। अगर आप तारीख पढ़ें तो दुनिया में जितना दीन इस्लाम में इल्म हासिल करने के लिए तुलबा ने कुर्बानियां दी हैं, किसी और कौम के तुलबा ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी। ये एजाज सिर्फ अल्लाह ने इस्लाम को अता किया है। ठीक है, दीन इस्लाम के अंदर एक खसूसियत इस उम्मत के साथ ये भी है कि अल्लाह ताला पिछली उम्मतों में जो काम अंबिया अलैहिम सलाम से लेते थे ना, जो काम अंबिया अलैहिम सलाम से लेते थे, अंबिया की क्या तारीफ होती है, जिनके ऊपर वही आती है। ठीक है, तो जो काम वही साहिबे वही से लिया जाता था, वो काम इस उम्मत के अंदर गैर साहिबे वही यानी जिसके ऊपर वही नहीं आती, जो नबियों में नहीं होता, जो उम्मतियों में होता है, उससे वो वाला काम लिया जा रहा होता है। जैसे कि सबको ही पता होगा, तबलीगी जमात में तो कुछ तो वक्त किसी ना सबने लगा ही होता है ना, किसी ना किसी दर्जे में। तो वहां पे क्या बात होती है, नबियों वाला काम, नबियों वाला काम, नबियों वाला काम, है ना। दावत तो तबलीग का काम पहले नबियों के जिम्मे था, अब जो है वो उम्मत के जिम्मे है दावत तो तबलीग का काम। सही है ना भाई? ठीक है, तो उसी तरीके से आप इल्म के लिए कुर्बानी को देखें तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। ठीक है, ये बात पहले भी कई दफा क्लास के अंदर हो चुकी है कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये के अंदर जब वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर ना उनसे अल्लाह ताला एक एक्स्ट्रा एफर्ट ले लेते हैं, भूख प्यास वाला, ठीक है, और लंबे सफर वाला। ठीक है, बेफायदा लंबा सफर बजाहिर नजर आता है कि भाई वो मछली जो है वो उछल करके पानी के अंदर सुरंग बना के चली गई, और इतने बड़े वाकये को यूशा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने भुलवा दिया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होते हैं तो यूशा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम फिर चल पड़ते हैं, चलते रहते हैं, हत्ता कि उनको जब शदीद भूख लगती है ना मूसा अलैहिस्सलाम को, और यूशा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि भाई लाओ हमारा तोशा, वो मछली लेकर के आओ, हमें भूख लगी है। तो यूशा अलैहिस्सलाम को उस वक्त याद आता है कि वो तो पहले हुआ था, मछली तो चली गई अजीब गरीब वाकये के साथ। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो ऑल द वे बैक ट्रैक करके उस जगह पे वापस आते हैं जहां पे मछली जो है ना वो समंदर में चली गई थी, मजमा अल बहरीन वाली जगह। तो अब ये जो एक एक बजाहिर खामखा का जो एक एक्स्ट्रा ये जो सफर करवाया, इसकी क्या वजह थी? अल्लाह जदाए खैर दे हमारे हजरत को, जिन्होंने अकाबरीन की तफासीर छान मार करके फिर हमारे सामने बयान फरमाई। उन्होंने फरमाया कि बताया हमें कि ये जो है ना ये इल्म के लिए कुर्बानी थी जो कि अल्लाह ताला ने उनसे एक्स्ट्रा ली। ठीक है, यानी एक तो उनका इरादा था कि मैं जो हूं ना चलता रहूंगा हत्ता कि मुझे खिजर अलैहिस्सलाम मिल ही जाते, और ये उनके इरादे के अलावा ये एक्स्ट्रा कुर्बानी थी जो कि अल्लाह ताला ने अपने इरादे से खाली उनको उस आजमाइश के अंदर डाला। ठीक है, तो इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ताला जब कुर्बानी देते हैं ना, तो फिर उसके ऊपर फिर डरना नहीं चाहिए और उससे चूकना नहीं चाहिए। तो फिर उसके बदले में फिर जो इल्म मिलता है तो माशाल्लाह वो फिर उसके अलग फायदे होते हैं। तो आगे फरमाते हैं कि जेल जाना पसंद किया मगर सबक का नागा ना होने दिया। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से हाकिम वक्त नाराज हो गया था और उसने उनको कैद करवा दिया। चंद दिन गुजरे तो हाकिम वक्त के दरबार में एक लड़का आया जो ज़ारो क़तार रो रहा था। उसके चेहरे पे नूरानियत थी, उसको इस तरह ज़ारो क़तार रोता देखकर सब लोग उसके साथ हमदर्दी करने लगे। चुनाचे उससे हाकिम वक्त ने पूछा कि मेरे दरबार में क्यों आए? उसने कहा कि मैं एक फरियाद लेकर आया हूँ, आप उसको पूरा कर दें। हाकिम वक्त ने कहा कि तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी फरियाद पूरी कर दूंगा, तुम्हारा काम कर दूंगा। हाकिम ने पूछा बताओ तुम क्या चाहते हो? वो लड़का कहने लगा मेहरबानी करके आप मुझे जेल भेज दें। हाकिम में वक्त ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि लड़का इस वजह से रो रहा था। उसने पूछा कि क्या तुम इसी बात पे रो रहे थे? उसने जवाब दिया जी हाँ, आपने मेरे उस्ताद को एक हफ्ते से जेल में बंद रखा हुआ है और मेरा सबक कजा हो रहा है, अब आप मुझे भी जेल भेज दीजिए, मैं जेल की मुशक्कतें तो बर्दाश्त कर लूंगा मगर अपने उस्ताद से सबक तो पढ़ता रहूंगा। अंदाजा लगाइए कि इल्म की तलब वाले ऐसे लोग भी दुनिया में गुजरे हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार थे कि हम वहां उस्ताद से सबक पढ़ लिया करेंगे। ठीक है ना, और ये जमाना भी क्या था, ये मुसलमानों की शान वाला जमाना था। अगरचे के इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को जेल में तो भेज दिया, लेकिन ये हाकिम वक्त जो था ना ये फिर भी मुसलमान था और इल्म की कदर करने वाला। ठीक है ना, शायद इसने उस तालिबे इल्म को वाकई जेल भेज दिया था सबक के नावे ना होने की वजह से। ठीक है, तो कभी किसी आलिम के साथ जो है वो उनका इख्तलाफ राय वगैरह हो जाता था, और चूंकि वो बड़े साहब होते थे और अमीर होते थे, अमीर से मतलब ये कि हुक्मरान होते थे, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पे जो है वो जेल भी भेज दें, लेकिन साथ साथ जो है ना वो इल्म का मुकाम अपनी जगह पे उन सबको होता था। अब वो जमाने नहीं है, तालिब इल्म ऐसे भी थे। अगला टाइटल है, तो कहते हैं कि जी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक बस्ती में दरस कुरान देते थे, दूसरी बस्ती के लोग उनके पास आए और कहने लगे कि हजरत आप हमारी बस्ती में भी दरस कुरान दे दें। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि फासला ज्यादा है, अगर मैं एक बस्ती से दूसरी बस्ती की तरफ जाऊं और फिर वापस आऊं तो वक्त खत्म हो जाएगा, यानी जाने आने में ही वक्त खत्म हो जाएगा। तो दूसरी बस्ती वालों ने कहा कि हम सवारी का इंतजाम कर देते हैं, आप दर्स देने के लिए सवारी पे बैठ के दूसरी बस्ती यानी हमारी बस्ती आ जाया करें, और दर्स देते ही सवारी पे बैठ के वापस आ जाया करें। तो उन्होंने कबूल कर लिया, लिहाजा उन्होंने दूसरी बस्ती में भी दर्स देना शुरू कर दिया। अब दो बस्तियों में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का दर्स होता था, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे सबसे सीनियर शागिर्द यही थे। एक तालिब इल्म आया और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगा कि हजरत मैंने आपसे एक किताब पढ़नी है। हजरत ने कहा कि मेरे पास तो वक्त है ही नहीं, मैं यहाँ दर्स देता हूँ, उसके बाद सवारी पर सवार होकर के अगली बस्ती में जाके दर्स देता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ, इसी में सारा वक्त खत्म हो जाता है। तो वो कहने लगा कि हजरत जब आप सवारी पर सवार होकर दूसरी बस्ती की तरफ जा रहे होंगे तो आप सवारी पे बैठे बैठे सबक पढ़ा दिया करें, मैं सवारी के साथ भागता भी रहूंगा और आपसे सबक भी पढ़ता रहूंगा। अब आप बताइए, कोई और कौम ऐसी है जो इल्म हासिल करने के लिए तुलबा की कुर्बानियों के ऐसे वाकयात पेश कर सके? अल्लाह ने इस्लाम को ये शान दी है कि दीन इस्लाम का हुस्नो जमाल है, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि उसका इल्म हासिल करने के लिए शागिर्दों ने इतनी मुशक्कतें उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मौके पर एक बात याद आई, तो तहदीस से नेमत के तौर पर अल्लाह ताला ने बुजुर्गों की नस्बत की वजह से, उनके साथ ताल्लुक की वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक अता फरमाई कि जब इस आजिज ने इल्म पढ़ना शुरू किया इल्म सर्फ से, कि बस जिसके अंदर ना फाला 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 की गर्दाने जो है वो पढ़नी होती थी और याद करनी होती थी, तो फजर से पहले क्लास होती थी, तहज्जुद के वक्त में घर से निकल करके यानी कोई 50 किलोमीटर के लगभग जो है ना वो गाड़ी का सफर करके आजिज जो है वो मस्जिद मस्जिद पहुंचता था। फजर की नमाज में जो है वो उस्ताद साहब आ जाते थे और फजर के फौरन बाद जो है वो दरस, और कभी जो है ना वो मस्जिद के अंदर बैठने की किसी वजह से कोई जगह नहीं होती थी वहां पे, अपना कोई दरस चल रहा है, कोई और मौका चल रहा है, तो हम बाहर आकर के गाड़ी में बैठ के दरस कर रहे होते। तो मुसलमान के लिए जो है ना ये कोई इमारत इमारत की भी जरूरत नहीं, कभी कहीं सबक हो रहा है, कभी कहीं सबक हो रहा है, कहीं सफर सफर के अंदर सबक हो रहा है, तो कहीं जो है वो सुबह की तारीकी में सफर सबक हो रहा है, तो कभी रात की तारीकी के अंदर सबक हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चलता फिरता मदरसा, चलते फिरते जो है ना वो दरसगाह, और चलते फिरते जो है वो तलबा। तो इल्म की खातिर भूख प्यास भी बर्दाश्त। बहुत सारे हमारे अकाबर ऐसे भी थे कि जिनको खाने के लिए नहीं मिलता था और वो भूखे प्यासे रहते थे मगर अपने इल्म में नागा नहीं होने देते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 1,000 से ज्यादा असातिज़ा से इल्म हासिल किया। एक मरतबा इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने नमाज पढ़ाई मगर भूल गए, तो अब्दुल रज़ाक ने पूछा कि हजरत क्या हुआ? फरमाया मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया जिसकी वजह से मुझे नमाज में चक्कर आ गया और मैं नमाज में इस वजह से भूल गया। तालिब इल्म नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान। तो फरमाते हैं कि 3 दोस्त थे, इब्नुल मुकरी, अबू शेख और तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों मस्जिद नबवी में इल्म हासिल किया करते थे। अल्लाह की शान के एक ऐसा वक्त आया कि तीनों के पास खाना पीना खत्म हो गया। ये गालिबन इमाम तिबरानी रहम तिबरी नहीं तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह, तो तीनों के पास खाना पीना खत्म हो गया और फाका शुरू किया। इस वक्त के तुलबा अपने खाने का इंतजाम खुद किया करते थे, आजकल तो मदरसे की इंतजामिया खाने पीने का इंतजाम करती है और तुलबा ने सिर्फ वहां जाकर पढ़ना होता है। एक दिन फाका, दूसरे दिन फाका, जब भूख लगती थी तो हम पानी पी लिया करते थे मगर पानी से तो पेट नहीं भरता। जब तीसरा दिन आया तो हमारा हाल ये था कि नकाहत की वजह से खड़े भी नहीं हो सकते, खड़े होने लगते तो ऐसे चक्कर आता था कि हम गिर जाएंगे। मेरे दोनों साथी कहने लगे कि हमसे इतना फाका बर्दाश्त नहीं होता, हम तो वापस अपने घर जा रहे हैं। चुनाचे वो दोनों घर चले गए। और मैंने दिन में सोचा कि मैं मजीद फाका बर्दाश्त कर लूंगा और घर नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी में लेटा हुआ था कि लेटे लेटे मेरे दिल में ख्याल आया, इब्रानी, ये मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम है और यहाँ के मेजबान अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम है। मेजबान यानी होस्ट जो है ना यहाँ पे, वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम है और तुम तो मेहमान हो। तुम अपने मेजबान को जाके बता दो कि मैं बहुत भूखा हूँ। ये ख्याल आते ही मैं सलाम पढ़ने के लिए मवाजे शरीफ पे चला गया, यानी नबी अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक जिस रुख में है, क़िबला की डायरेक्शन में, वहां पे खड़े होकर के जो सलाम पेश किया जाता है मवाजे शरीफ। तो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत पे सलाम अर्ज करने के बाद मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलजू, वो बहुत भूख लगी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहकर मैं मस्जिद से बाहर निकला, मैंने देखा कि एक आदमी ने हाथ में सालन का बर्तन और रोटियों की गठरी पकड़ी हुई है और वो मेरा नाम पुकार के कह रहा है, तिब्रानी कहाँ है, तिब्रानी कहाँ है। मैंने उससे पूछा कि आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। उसने कहा कि मैं मस्जिद का पड़ोसी हूँ, मैं दोपहर को कैलूला करने के लिए सोया हुआ था तो सलाम की ज्यारत नसीब हुई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम मस्जिद के पड़ोसी हो और मस्जिद में मेरा एक मेहमान भूखा है, तुम जाओ और उसको खाना खिलाओ। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी ने सालन तैयार कर लिया है और वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। मैंने उससे कहा कि घर के लिए दोबारा फिर खाना बना लो और ये खाना मैं नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान को देने के लिए जा रहा हूँ। मैं घर से निकला और मैंने आपका नाम पुकारना शुरू कर दिया ताकि नबी अलैहिस्सलाम के इशारे पर मैं आपको आपका खाना पहुंचा दूँ। तो हमारे अहले सुन्ना वल जमात का तो अकीदा यही है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो वहां पर बात को सुनते हैं और बाकायदा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत के साथ नबी अलैहिस्सलाम जो है वो ऑर्डर्स भी किसी की ख्वाब में आकर के उसको बाकायदा अहकाम भी जारी फरमा रहे हैं। और सलाम का जवाब देना तो वो तो वैसे भी हदीस से साबित है और उसके ऊपर तो इवन दूसरे लोगों का भी इत्तफाक है, वहां पे जाके सलाम पेश करते हैं तो जवाब मिलता है इल्ला चंद तो तुलबा की दावत दर हकीकत नबी अलैहिस्सलाम की दावत है। मशहूर वाकया है कि एक बुजुर्ग गरीब लोगों पर बड़ा खर्च किया करते थे। हर जुम्मे के दिन वो गरीबों के लिए दस्तरखान लगवाते और उनको खाना खिलाते। एक दिन उनको ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज्यारत नसीब हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की दावत तो रोज करते हो मगर मेरी दावत तो कभी भी नहीं की। इसके बाद ख्वाब खत्म हो गया। वो बुजुर्ग बड़े परेशान हुए कि इसका मानी क्या है। चुनाचे एक और बुजुर्ग से उन्होंने इसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि आप दरअसल गरीबों पर तरस खाते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, उनकी दावत करते हैं, तो ये गोया अल्लाह की दावत हो गई। और नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है कि तुम मेरी दावत नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप उलमा और तुलबा की दावत नहीं करते। चुनाचे उन्होंने फिर बिलखसूस उलमा व तुलबा की दावत करनी शुरू की और ये गोया नबी अलैहिस्सलाम की दावत बन गई। नबी अलैहिस्सलाम को इल्म हासिल करने वाले तुलबा के साथ इतनी मोहब्बत होती है कि इन उन तुलबा की दावत करना गोया नबी अलैहिस्सलाम की दावत करने के मुतरादिफ होता है। अब आप बता दें ऐसा क्यों है? ठीक है, थोड़ा सा क्विज भी होना चाहिए, मैं तो पढ़े चला जा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है के उलमा और तुलबा की दावत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की दावत होती है? उसकी वजह तो उन्होंने बता दी ना कि गरीब लोगों को जो है वो अल्लाह का बंदा समझ करके तुम उनकी दावत कर रहे हो तो इस वजह से वो गोया अल्लाह की दावत हो गई। ठीक है, जाहिर है अल्लाह को तो नहीं खिला रहा कोई भी, यहाँ पर भी नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं खिला रहे, तो गोया की नबी अलैहिस्सलाम की दावत हो गई। क्यों? क्योंकि यही उनके वारिस हैं। ठीक है, वारिस हैं। तो वारिस का मतलब क्या होता है? विरासत, वरासत उलंबिया। उलमा नबियों के वारिस हैं। उलमा कराटे करते हैं क्या देखना चाह रहे हैं? उलमा कराटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। उलमा का काम करने वाले, उनका काम करने वाले हैं जी। वारिस 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 तो माशाल्लाह हमें अब अच्छी तरीके से याद हो गया है, लेकिन अब जो है ना वो वारिस की कुछ तशरीह की भी जरूरत है। ठीक है, तशरीह भी तो करें ना कि क्या है वारिस की तशरीह। नबी अंबिया के पास कौन सी विरासत होती है, कौन से उनके पास वेल्थ होती है कि जो इन्होंने विरासत में ली हुई होती है? इल्म। ठीक है ना, इल्म। नबी का काम क्या होता है? इल्म सिखाना। इल्म सिखाना यानी तरीका बतलाना कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। ठीक है, तरीका बतलाना, सही है। तो इस तरीके को ही इल्म कहते हैं, तरीके का इल्म, राइट? कि भाई कैसे कुरान मजीद की तिलावत करनी है, यतलू अलैहिम आयाती ही, ठीक है ना, कैसे कुरान मजीद की तिलावत करनी है, कैसे कुरान मजीद को जो है वो पढ़ के लोगों को दीन की तरफ बुलाना है, दावत भी इसमें शामिल हो जाती है। फिर वयुज़क्कीहिम, कैसे तज़किया करना है अपना, कैसे करना है तज़किया, ठीक है ना, और कैसे तज़किया नहीं होता, जिसको तुम अगर तुम्हें शैतान ने बोल दिया कि ऐसे तज़किया होता है, नहीं ऐसे नहीं होता तज़किया, ठीक है। उसी तरह युअल्लिमुहुमुल किताब, अल्लाह की किताब के अंदर क्या हमें बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो इल्म है। तो नबी इस दुनिया के अंदर इल्म लेकर के आए होते हैं, ठीक है ना, इसी को हिदायत कहते हैं कि अल्लाह कैसे राजी होगा और अल्लाह ताला कैसे नाराज हो जाता है ताकि उससे हम बच सकें, ठीक है। तो अब ये जो इल्म अंबिया लेकर के आए हैं, इस इल्म को आगे कौन लेकर के उम्मतियों को पहुंचाता है, जो कि यानी हर जेनरेशन में जो वही वाला काम कर रहे हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम करते थे, वो उलमाए कराम, ठीक है। तो अंबिया का काम है, असल काम है ना, वो इल्म है। अब वो इल्म किसी एक शक्ल का इल्म नहीं है, बल्कि उसमें दावत और तबलीग का भी इल्म शामिल है, तज़किया नफ्स का इल्म भी शामिल है, और जो है वो यानी नमाज का इल्म भी शामिल है, रोजे का, ज़कात का, हज का, कुर्बानियों का, हर चीज का इल्म उसके अंदर शामिल है। और हिकमत की बातें, उसका भी तो इल्म है ना, हिकमत की बातें क्या है, इल्मी शक्ल में वो प्रिजर्व है ना, तो वो लोगों को बताना, जिसको सुन्नत कहते हैं, ठीक है। तो उलमा जो है वो वही काम कर रहे होते हैं जो कि नबियों का काम है। इस वजह से उलमा की दावत नबियों की दावत है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उलमा को अगर कोई हदिया देता है, उलमा का अगर कोई यानी उनका उनकी जिम्मेदारी लेता है, उनके नफ्ते की जिम्मेदारी, उनके जो है वो खाने पीने की जिम्मेदारी, उनके जो है वो बीवी बच्चों के इंतजाम की जिम्मेदारी, वो दरअसल नबी अलैहिस्सलाम के काम की जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। शैतान ने और जो शयातीन के जो एजेंट्स हैं ना, उन्होंने इसको क्या कहा है, ये मौलवी तो टुकड़ों पे पलते हैं, मौलवी तो टुकड़ों पे पलते हैं, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा को इन टुकड़ों के ऊपर फखर है, इन टुकड़ों के ऊपर फखर है, जो हकीकी मानों में उलमा कहलाने के काबिल है ना, उनको इन टुकड़ों के ऊपर फखर है। और जो नहीं है, फिर वो यही जॉब क्यों नहीं करते, है ना, आलिम बनने के बाद जो है वो जॉब कर लेनी चाहिए और वो कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, भाई क्या मसला है, जो तुम जो जो तुम्हारी एक्सपर्टीज है, जो तुम्हारा एरिया है, वहां पे तुम सही से क्यों नहीं काम करते, वहां पे सही से काम करो भाई, उससे अच्छी जॉब और कोई जॉब हो ही नहीं सकती, उससे अच्छी जॉब कोई और हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। अब हमारा क्या मसला है, हम तो वो अच्छी जॉब का मतलब क्या है, कितने जीरोज लगे हुए हैं नंबर के आगे, राइट, कितने फिगर्स की जो है वो सैलरी है, ये हमारी अच्छी जॉब की जो डेफिनेशन है, इज्जत और अल्लाह ताला की तरफ से इत्मीनान, ये हमारे हमारे रिस्क की डेफिनेशन में ये चीजें शामिल नहीं होती, बस वो जो कागज के नोट है ना, कागज के नोट, वो हमारे यहाँ रिस्क की डेफिनेशन बन चुकी है, बना दी गई है। तो कागज के नोट जो है वो मौलवी को कम मिल रहे होते हैं, कागज के नोट जो है वो सेठ साहब को ज्यादा मिल रहे होते हैं, या जो है वो किसी मैनेजर साहब को ज्यादा मिल रहे होते हैं, या किसी डॉक्टर साहब को ज्यादा मिल रहे होते हैं, तो हम समझते हैं जी वही अच्छी जॉब है, वही असल जॉब है, राइट। तो कागज के नोट अगर ज्यादा मिल, उलमा को कागज के नोट भी ज्यादा मिल सकते हैं, मिल रहे हैं बहुत सारे उलमा को आज भी, लेकिन अगर नहीं मिलते तो भाई कागज के नोट वालों की जिंदगी को देखो, और जिनके पास कागज के नोट कम है उनकी जिंदगी को देखो, तो इत्मीनान और सुकून और घर की मोहब्बतें और इज्जतें, राइट, ये उधर नहीं मिलेगा, वहां पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन और न जाने किस किस किस्म की बीमारियां मिलेंगी। लेकिन जो अल्लाह का शुक्र अदा करके, जो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत वाली जो रोजी अता फरमाई है, वहां पर मोहब्बतें भी हैं, उल्फतें भी हैं, हकीकी मानों में एक दूसरे के साथ खैरख्वाही भी है। अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ दोस्तों के साथ बात हो रही थी कि प्रोफेशनल एडवाइस, आप किसी से के पास जाने के लिए, किसी के पास जाए ना लेने के लिए, कोई नहीं बताएगा, एक भाई बोल आप मौजूद हैं यहाँ पर, वो भाई भी बताने लगे कि ये जो हमारे दूसरे भाई ने फ्री में एक ऐसी प्रोफेशनल एडवाइस दी कि जो के कोई नहीं देता। आप जाएं लोगों से जाकर के कोई मशवरा करने के लिए, वो उल्टी गोलमोल करके बात खत्म कर देंगे, आपको नहीं बताएंगे कि क्या तरीका होना चाहिए। हालांकि उनको पता है कि किस चीज के अंदर फायदा है, किस चीज के अंदर नुकसान है, लेकिन वो नहीं बताएंगे। और अगर बताएंगे तो चार्ज करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। तीन ही निस्बत जहां पर है, जहां पर मशायख की निस्बत है, वहां पर ये लाखों की जो एडवाइस होती है ना, फ्री में, फ्री में। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की खातिर, आखिरत के सवाब की खातिर, निस्बत की मोहब्बत की खातिर। तो ये रिस्क नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ रोकड़ा ही रिस्क होता है, सिर्फ कागज के नोट ही रिस्क होते हैं, सिर्फ जो है वो सोने चांदी की झंकार ही तुम्हारा रिस्क होता है, और उसके अलावा कोई चीज रिस्क नहीं होती। तो भाई सबसे ज्यादा रिस्क तो दीन के रास्ते के ऊपर है, दीन के रास्ते के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क। लेकिन हम अंधों को जाए वो नजर ही नहीं आता। अब अंधों को ना नजर आए तो फिर ये तो नहीं है ना कि ये हिमालय पहाड़ के सामने कोई अंधा खड़ा हुआ है और वो कहे कि जी मुझे तो हिमालय पहाड़ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो तुम अंधे हो इस वजह से नजर नहीं आ रहा ना, वरना है तो सबसे बड़ा पहाड़। तरीके से हम अंधे हैं, हमें जो है वो दीन के रास्ते को रिस्क नजर नहीं आता, तो हम समझते हैं कि है ही नहीं यहाँ पे रिस्क। अजीब अजीब जहालत वाली बातें करते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, है ना। ये एक कहने लगी कि जी वो किसी ने कहा कि अगर एजुकेशन हासिल कर लेते ना तो जॉब मिल जाती, आलिम कोर्स चूंकि कर लिया तो जॉब इस वजह से नहीं मिल रही है। तो क्या कहना चाह रही है, एजुकेशन क्या चीज होती है और आलिम का मतलब क्या होता है? आपको तो लफ्ज का मतलब भी नहीं पता। चलो अरबी के लफ्ज का आपको मतलब नहीं पता ना, अंग्रेजी के लफ्ज को भी आपको मतलब नहीं पता कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जहालत की इंतहा हमारे मुआशरे के अंदर छाई हुई है, ठीक है। और इसी को ये उसकी वजह जो है ना वो गुलामी है, और वो गुलामी की वजह हमारे गुनाह है, ठीक है। हम तो इससे निकलेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला सब सेट कर देंगे। अब जो है वो तुलबा की दावत वाली बात मुकम्मल हुई। क्या कहते हैं हजरत, लेकिन आम तौर पर हमें इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके दुआ मांग सकते हैं जिस तरह से इब्राहिम ने मांगा? दुआ नहीं मांगी थी, खाना मांगा था, ठीक है। वहां पहुंच के मांगे, अपने घर से नहीं मांगना शुरू कर दिया, ठीक है। रोटी की खुशबू सूंघ कर दिन गुजार देते। किताबों में लिखा है कि इमाम अबू अली बलखी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि मेरे ऊपर कई दिन का फाका होता था और मैं एक जगह जहां तनूर लगा होता था, लगा हुआ था, उसके पास बैठकर मुताला किया करता था। तो खुद मैं तो खा नहीं सकता था, मगर रोटियों की खुशबू से मैं अपने नफ्स को सबर की तलकीन करता रहता था और इस तरह मेरा दिन गुजर जाता था। आप अंदाजा लगाइए कि कितना उनको भूख का मुजाहिदा बर्दाश्त करना पड़ा होगा कि खाने को कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ रोटी के पकने की महक सूंघकर वो अपना दिन गुजार दिया करते थे, ठीक है। तो भाई ये मुजाहिदे तो आज के दौर में कोई नहीं करता। आज के दौर में तो यानी आलिम दीन को तो छोड़ दें, जो बिल्कुल जाहिल होते हैं ना, जिनको कुछ भी नहीं आता और ना उनके पास कोई जॉब होती है, उनको भूख का मुजाहिदा बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, राइट। जिनके पास कोई इल्म नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, तो उनको भूख का मुजाहिदा आज बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं बर्दाश्त करना पड़ता आज, ठीक है ना, वो काफिरों की मेहरबानी की वजह से, ठीक है। उनको भूख का मुजाहिदा बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, किसी को भी क्यों नहीं बर्दाश्त करना पड़ता? काफिरों की मेहरबानी की वजह से कि खाना पीना इतना वाफिर मकदार में मौजूद है, इतना वाफिर मकदार में मौजूद है कि कोई भूखा पेट नहीं सो सकता। खाना फेंका जा रहा होता है, खाना कम नहीं होता, ठीक है ना। वो हम ये एक भाई बता रहे थे, आप लोग कुछ लोगों के सामने भी बयान किया था ना, कि जो फसल लगाई जाती है ना पाकिस्तान के अंदर फसल, ठीक है ना, तो जिस फसल को जो है वो साल लगता था ना उगने में और फिर तैयार होने में, फिर वो कटती थी, फिर वो मार्केट में आती थी, तो जिसको कहते हैं ना भाई ये इसकी इसका मौसम है, ठीक है ना, तो वो अपने मौसम में आती थी क्योंकि टाइम लगता था बीज को उगने में, बड़ा होने में, फिर उसके ऊपर जो है वो ग्रेन्स आने में, फिर ग्रेन्स को पकने में। अब जो है वो वही फसल जो एक साल में तैयार होती थी एक दफा और मार्केट में वो जो है वो सिर्फ अपने सीजन में आती थी, अब वही चीज जो होती है मार्केट में थ्रू आउट मौजूद होती है। हम समझ रहे होते हैं कि जी वो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था इस वजह से सारा साल अवेलेबल होती है, नहीं, इट्स नॉट जस्ट दैट। कोल्ड स्टोरेज वाले भी जमाने शायद खत्म हो गए होंगे, अब जो है ना एक साल के अंदर कई फसलें तैयार होकर कट करके मार्केट में आ रही होती है, वो फसल कटती है मार्केट में आती है, अगली लगा देते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी उगती है, फिर वो कटती है, मार्केट में आती है, फिर अगली लगा देते हैं। और जिस पौधे के ऊपर जितने ग्रेन्स पहले उगा करते थे सही मानों में, अब जो है वो उससे कई गुना ज्यादा दाना उग रहा होता है। अब उसकी यानी यही तो, जब भी तो हम कहते हैं साइंस पढ़नी चाहिए, और जो है वो काफिरों से जो है वो यानी उन्होंने कितना फायदा हासिल किया वगैरह, जरा अंदर भी जाकर के देख लें कि इस फसल को खाने के बाद पेट तो भर जाता है, या भरता भी नहीं है बल्कि बस शहवत पूरी हो जाती है और थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंदर आपके जो बीमारियां पैदा हो रही होती है ना, वो बीमारियां पहले पैदा नहीं हो रही होती। ठीक है, ये जो शुगर की बीमारी है, ये जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, और ये जो कैंसर की जो बीमारियां हैं, और ये दूसरे इस किस्म के जो सारी ऑटो ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह हैं, ठीक है ना, और शुगर सबसे बड़ा मसला इसके अंदर। तो ये इसी फसल की वजह से जो है ना, इसका डायरेक्ट इसका इसका कनेक्शन है इन सारी बीमारियों के साथ। तो भूखा पेट अब कोई नहीं सो रहा, लेकिन सेहतमंद भी कोई नहीं सो रहा, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट ए ब्लेसिंग, दिस इज रादर ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इट्स नॉट ए ब्लेसिंग, और रादर ए नॉट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो एक्चुअली पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिस इज ए कर्स इन डिस्गाइज ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। तो ये जो मुजाहिदे हैं ना, भूख भूख के मुजाहिदे, ये तो खाली इसलिए यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि भाई उन्होंने तो इतने मुजाहिदे बर्दाश्त किए थे, हम तो बस छोटे मोटे थोड़ी मोटी जो है ना, वो जरा लाइट चली गई, या जो है वो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी, या थोड़ा सा इस किस्म का कोई और मसला हो गया, वरना आजकल के मुजाहिदे भी बहुत हल्के मुजाहिदे हैं। तो डरने वरने की भी कोई जरूरत नहीं कि जी इनके रास्ते के ऊपर डाल दिया तो फिर इतने मुजाहिदे बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। नहीं भाई, वो जमाने के मुजाहिदे अल्लाह ताला डालते ही नहीं है किसी के ऊपर। पूरा साल फलों के छिलके खाकर इल्म हासिल किया। अब ये वाकयात ही इतने सारे हैं, एंड तक जो है वो मुझे भी थोड़ी सी अब जल्दी लगी हुई है कि इस टॉपिक को खत्म किया जाए, क्योंकि आगे जो है ना वो हमें ईमान और कुफर की किताब इंशाल्लाह शुरू करनी है इस वाली क्लास के अंदर। तो इस आज की क्लास में तो बहरहाल मुकम्मल नहीं हो सके, लेकिन मैंने थोड़ा सा और पढ़ लिया था कि अगली क्लास में शायद फिर भी मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। तो ये एक और वाक्य पढ़ लेते हैं कि पूरा साल फलों के छिलके खाकर इन हासिल किया। हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के हालात जिंदगी में लिखा है कि जब दारुल में आए तो उनसे कहा गया कि आपको दाफना नहीं मिल सकता, इसलिए कि दारुल में जितने तुलबा हैं उनकी तादाद के हिसाब से बस्ती के लोगों ने उनकी अपने अपने घर खाना पकाने की जिम्मेदारी ले ली है। अब एक भी घर, सॉरी, जिलानी नहीं थे, हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह, देवबंद की बात हो रही है ना। तो अब एक एक भी घर देवबंद में मुझे सिर्फ दाखिला दे दीजिए, चुनाचे उनको मशरूत दाखिला दे दिया गया, यानी खाने का आप खुद ही इंतजाम करेंगे ना। ये शर्त ही कहते हैं कि मैंने सारा दिन तुलबा के साथ मैं क्लास में पढ़ता, और फिर शाम को उसका तकरार भी करता। जब रात को सब खाना खाने के लिए चले जाते तो मैं उस्ताद से इजाजत लेकर दारुल से बाहर निकलता। उस वक्त बस्ती में फलों की दो दुकानें थीं, और उन दुकानों के सामने फलों के छिलके पड़े होते थे। मैं उन छिलकों को उठा के लाता था और उनको धो के पाक साफ करके खा लेता था। ये मेरा 24 घंटे का खाना होता था। मैंने पूरा साल फलों के छिलके खा के गुजारा तो कर लिया, लेकिन अपने सबक का नावा नहीं होने दिया। तुलबा ने ऐसे मुजाहिदे भी किए हैं, और इससे भी ज्यादा इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने अपने आप को मुशक्कतों में डाला है। इंसान ऐसे वाकयात पढ़कर हैरान हो जाता है। ठीक है, तो हमारी हैरानी के लिए, हमारे हमारे मोटिवेशन के लिए ये वाकयात बताए जाते हैं, वरना इस दौर के अंदर मुजाहिदे भी जो है वो बहुत कम होते हैं। इस दौर के अंदर तो हम अपनी बस ख्वाहिशात का ही अगर मुजाहिदा कर लेना, कुर्बानी दे लेना, यानी अपना सेलफोन, अपना स्मार्टफोन, ठीक है ना, और अपने जो हम यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखते हैं, और पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग की उल्टी सीधी चीजों में अपना वक्त जाया करते हैं ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुजाहिदा है। सेलफोन से बच बचा करके किताब पढ़ लेना, इल्म हासिल कर लेना, इस वक्त तो हमारे लिए ये मुजाहिदे हैं, ठीक है, और उल्टी सीधी और ख्वाहिशात के मुजाहिदे इससे ज्यादा, और अपने जो जो हमारी ख्वाहिश होती है कि यार ऐसा होता कि बस दीन में ये होता ही ना, दीन में ये पाबंदी होती ही नहीं, इसके लिए मुजाहिदा करना पड़ता है कि भाई दीन को बदलना नहीं है, मैंने मैंने अपने आप को बदलना है। ये जो सोच का मुजाहिदा है ना, इस वक्त उम्मत के लिए ये सोच का मुजाहिदा जो है वो बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, ठीक है। तो इस किस्म के खाने पीने के और गर्मी सर्दी के मुजाहिदे तो नहीं है, ये اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں ہمارے وسائل کو، ہمارے آل و اولاد کو، ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.